If I took my own route, I'm not sure what I feel. जो ऐसा मानते हैं भगवान हैं और हमारे अपने हैं, ये उस अजन्मा का जन्म मनाते हैं। आप कहेंगे अजन्मा का जन्म कैसे मनाया जाता है? जैसे किसी को अपना बनाना हो और अपना भी कैसा, किसी को वात्सल्य रस लेना हो, किसी को सख्य रस लेना हो, किसी को मधुर रस लेना हो, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले ये सोचेगा कि मेरा प्रेमास्पद में कुछ बातें मेरे जैसी होनी चाहिए। जब ये मानता है कि मेरा जन्म हुआ है तो कहता है अजन्मा का जन्म मना हुआ। क्यों तो मना हुआ? अजन्मा का जन्म हो ही नहीं सकता भाई। अजन्मा का जन्म मेरा जैसा तो नहीं हो सकता, परंतु अजन्मा की अभिव्यक्ति होती है। कब होती है? जब विवेक प्रति बुद्धि उसमें सम हो जाए जो सब में है और जिसमें सब है। देखिए, परमात्मा उसे नहीं कहा जा सकता जो सभी में न हो और जिसमें सब न हो। परमात्मा की ये बड़ी सुंदर परिभाषा है, संकेत। वैसे तो सत्य की परिभाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए उपमा कोई संभव ही नहीं है। अनुपम के लिए उपमा कहां से आ जाएगी और अद्वितीय के लिए उदाहरण कहां से आ जाएगा? उस जैसा कोई कम उदाहरण हो तो वो जो अद्वितीय परमात्मा है वो सदैव है और सभी का है और सभी में है। ये तो मन नहीं करेगा, क्योंकि जो सदैव नहीं है वो परमात्मा नहीं हो सकता, और जो सभी का नहीं है वो परमात्मा नहीं हो सकता, और जो सभी में नहीं है सो परमात्मा नहीं हो सकता, और जो अद्वितीय नहीं है सो परमात्मा नहीं हो सकता। तो ऐसा जो परमात्मा है सभी में होने से अपने में भी है, सभी का होने से अपना भी है, और सदैव होने से अभी भी है, अभी भी है। अब आप विचार कीजिए कि जो अपना हो, अपने में हो और अभी हो, उसकी प्राप्ति किसी श्रम साध्य उपाय से नहीं होती। तो कैसे होती है? उसमें आस्था की जाए और हम श्रम रहित हो जाए। आस्था करें और श्रम रहित हो जाए। आस्था का अर्थ नहीं होता है हम उसको स्वीकार करें और समृद्ध हो जाए कि भाई जब हमने उसको स्वीकार कर लिया जो सभी में है, जो सदैव है, जो सर्वत्र है, तो फिर श्रम की अपेक्षा क्या रहेगी? जब मानव श्रम रहित होता है तब उसकी बुद्धि उसमें स्थित हो जाती है जो सब में है, जिसमें सब। ऐसा नियम ही है। अब वैज्ञानिक दृष्टि देख लीजिए, जब हम ये मान लेते हैं कि जो सभी में है सब में है, हमने ये जब आस्था कर ली तो फिर हमारी बुद्धि सम हो जाएगी। बुद्धि के सम होने पर दुखों की निवृत्ति तो होती है पर रस की अभिव्यक्ति भी होती है। उसी प्रकार यदि ये मान लिया जाए कि जो सब में बात करता है, जिसमें सब बात करता है, वो वासुदेव और विवेकवती उनमें सम होने वाली बुद्धि से आनंद घन भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। और कहाँ हुआ? कारागार में हुआ। और जिसमें श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ उस समय जो पहरेदार थे वो सब सो गए और वो ताले से टूट गए। सुना ना कदम है, हमने भी सुना है। तो पहरेदार सब सो गए मतलब इंद्रियां, मन, बुद्धि सब अविषय हो गए। अब बिना इंद्रियों के, बिना बुद्धि के कौन बताए कि इसमें कैद जो कारागार में जो वासुदेव वसुदेव जो देव की थी वो कहां गए? तो देव की तो वहां की वहीं रही, वो तो कारागार के बाहर नहीं निकली। अब वसुदेव जी चले उस अपने आनंद घन श्री कृष्ण को गोद में लेकर जब चले, पैलेस में खुले हुए थे, पहरेदार सब सोए हुए थे, अब वहां कोई था ही नहीं। वो कहते कहां लिए जा रहे हो? और जाकर के स्नेह निर्मित श्री यशोदा जी की गोदी में बिठा दिया, सुला दिया। और उसके बदले में क्या ले गए साहब, वो आप जानते ही कथा में, वो लड़की हुई थी उनके रोहिणी की जगह यशोदा की लड़की नहीं हुई, यशोदा की लड़की करुणी तो हुई होगी। तो जहां विस्नेह होता है और जहां आनंद होता है वहां शक्ति का प्रभाव होता है। तो शक्ति को उठा लिया और आनंद रंग श्री कृष्ण को सुला दिया। अब यहां एक विचार करने की बात है कि वसुदेव देवकी से आनंद रंग श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो सकता है किंतु पोषण नहीं हो सकता। यदि तो लोग समाधि का आनंद आ रहा था बोले वो उत्थान हो गया। योग से परम तत्व की अभिव्यक्ति तो हो सकती है परंतु परम तत्व को लाड़ नहीं लाया जा सकता है, इसलिए योग में सामर्थ्य नहीं है। ये किसमें सामर्थ्य है? ये प्रेम में सामर्थ्य। तो प्रेम में श्री यशोदा जी की गोद में श्री कृष्ण का पोषण हुआ। हमारे यहाँ की जो प्राचीन लेखक शैली है उसमें इस बात का बड़ा ध्यान रखा गया है कि कहीं मनुष्य उस अनंत को छोड़कर किसी और को लाड़ न लाने लग जाए, भूल न जाए कहीं, तो उसकी बार बार याद दिलाते रहते हैं हमारे पुराण गाथाएं। क्या याद दिलाई? कि जब आनंद घन श्री कृष्ण को लेकर चले तो जमुना के उस पार है नंद और यशोदा और जमुना के इस पार है कौन? देवकी वसुदेव। अब बीच में जमुना जी है। ये यमुना जी जो है ये प्रेम से निर्मित जल है। जैसे प्रेम को ये स्थूल बना दिया जाए तो उसका नाम यमुना हो जाता है। जैसे ब्रह्म का द्रवीभूत जल श्री गंगा जी मानते हैं हम हिंदू लोग, ऐसे ही जमुना जी को मानते हैं ये प्रेम का निर्मित जल है। तो जब नंद जी जब वसुदेव जी लेकर चले हैं तो नन्ना सा बालक था तो जमुना ने कहा अरे ये तो मेरा प्राण बल्लभ जा रहा है तो मैं अगर वसुदेव जी को डुबा दूंगी तो बड़ा कलंक हो जाएगा। वो तो थोड़ी थोड़ी रह गई, अब थोड़ी थोड़ी रह तो गई पर प्रेम निर्मित श्री यमुना जी अपने प्रेम आस्पद के स्पर्श करना चाहती हैं तो थोड़ा थोड़ा बढ़ती हैं। किसी तरह श्री कृष्ण के श्री अंग का स्पर्श हो जाता और इससे क्या सिद्ध हुआ कि कहीं पाठक ये बात न भूल जाए कि वो जो प्रकट हुआ था वो अनंत नहीं था, अंड नहीं था, सभी का अपना आप नहीं था, ये भूल न जाए कहीं, इसलिए बीच में याद दिला दी। लेकिन उसको कौन स्पर्श कर सकता है? कौन स्पर्श कर सकता है? सबसे पहले वही स्पर्श कर सकता है कि जिसमें वात्सल्य स्नेह हो, वात्सल्य स्नेह हो उसी को न पहले उसी को वही स्पर्श कर सकता है। महाराज भगवान राम के जन्म में ये बताया जाता है ब्रह्म को सुख नहीं मिला। पहले इसने निर्मित श्री यशोदा जी को उस अनंत के अनंत को अपनी गोद में देखने का, खिलाने का, वात्सल्य रख देने का अवसर मिला। उसके बाद नंद को मिला, उसके बाद ब्रजवासियों को मिला। ये है क्या, ये प्रेम की श्रेणियां हैं। ये जो भक्ति रस के भीतर जहाँ कहीं दास भाव, सख्य भाव, वात्सल्य, मधुर भाव की बात कही जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में दास भाव की चर्चा तो है ही नहीं। श्री कृष्ण अपना मित्र बनाना तो जानता है, इससे छोटा बनाना कभी जानते ही नहीं। क्यों? जिसमें जितना अधिक ऐश्वर्य होता है उसमें उतना ही अधिक माधुर्य होता है और उसमें उतना ही अधिक सौंदर्य होता है। तो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य में, माधुर्य में, सौंदर्य में कोई सीमा नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ये सहन ही नहीं कर सकते कि कोई ऐसा भी है जिसे मैं अपना दास हूं, या तो उन्हें अपना सखा दिखाई देता है, या अपनी मैया दिखाई देती है, या अपना बाप दिखाई देता है, या अपनी प्रिया दिखाई देती है। तीन ही रसों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में आती है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि आज उसका जन्मदिन है भाई। कभी द्वापर हुआ था, आप क्यों मनाते हो? ऐसी बात नहीं, भगवान का प्रादुर्भाव सदैव हो सकता है, पर कब? वसुदेव देवकी हो तब, नंद यशोदा हो तब, ब्रजवासी हो तब, ब्रज गोपी हो तब, और उसी स्नेह से निर्मित ब्रज भूमि हो तब, और उसी स्नेह से निर्मित श्री यमुना जी हो तब, गऊ और ग्वाल हो तब हो सकता है भाई। क्योंकि स्नेह निर्मित भूमि में श्री कृष्ण का चरित्र दिखाई देता है, उनका प्रादुर्भाव होता है। बिना स्नेह के बिना श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव नहीं होता। इसलिए भाई हम उस अजन्मा का जन्म मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं, आप देखिए वर्मा साहब को गर्मी लगी तो पंखा लेके खड़े हुए। क्यों? ये प्रेम का स्वभाव है कि जब मनुष्य किसी के साथ प्रेम करता है ना, तो पहले अपना सुख बांट देता है, अपना सुख बांट देता है, अथवा यूं कहो कि अपने स्तर पर ला के रख लेता है। तो हम जन्म मृत्यु के जाल में फंसे हुए मानव उस अजन्मा का भी आज जन्म मनाते हैं। ऐसे वैसे नहीं मनाते हैं, आप जानते हैं बुद्धि के स्तंभ करने के लिए व्रत अपेक्षित होता है, उपवास अपेक्षित होता है। उपवास का असली अर्थ क्या है? इंद्रिय विषय से रहित हो जाए, मन विषय से रहित हो जाए। क्यों? भोजन क्या है? इंद्रियों का विषय इंद्रियों का भोजन है, मन का विषय मन का भोजन है, बुद्धि का विषय बुद्धि का भोजन है। बोली आज तो उपवास है, आज भोजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इंद्रियां हमारी अविषय हो जाएंगी, मन अविषय हो जाएगा, बुद्धि अविषय हो जाएगी। तब क्या होगा कि जब इंद्रियां अविषय हो जाएंगी तो मन निर्विकल्प हो जाएगा, बुद्धि स्तम हो जाएगी, आनंद घन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए उपवास करते हैं। और आपने सोचा सब जन्म कब होता है? रात्रि में होता है, अंधेरे में होता है। अरे बाबा, अज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान के प्रकाश में प्रकाश नहीं होता, अज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। तो जब श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और उधर शक्ति को लेकर श्री वसुदेव जी फिर कारागार में पहुंच गए, उधर अहम भाव रूपी कंस ने पता लगाया, तुमने कही लड़की हुई है, तुम्हें लड़की को मार डालो। तो उसने पत्थर से जो पूछा, तो शक्ति को शक्ति नाश नहीं कर पाती है, अहम शक्ति का नाश नहीं कर पाता। तो शक्ति ने कहा, अरे तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो ब्रज में हो गया उत्पन्न। तेरे मारने वाला किसका? अहम रूपी मामा को मारने वाला, वो श्री कृष्ण जो कुटिया पकड़ के पटक सकता है, जिसको जरूरत नहीं है धनुष बाण आदि लेने की, इतना ऐश्वर्य है जिसे। किसी ऐश्वर्य की पहचान क्या है? जिसको बाह्य तैयारी न करना पड़े समझ लो उसके बना और कोई ऐसा विवाद नहीं है। श्री कृष्ण को के चरित्र में आप देखो बाह्य तैयारी की गंदी नहीं। अगर दुष्टों का श्रृंगार करते हैं तो और भक्तों का के रस का भक्तों की भक्ति का स्वादन करते हैं तो वो श्री कृष्ण को तैयारी के साथ नहीं करते। क्या कहाँ करते हैं, कहीं वन में करते हैं, कहीं निकुंज में करते हैं, कहीं और बिल्कुल साधारण से साधारण परिस्थिति में अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य और सौंदर्य का प्रादुर्भाव श्री कृष्ण के चरित्र में दिखाई देता है। तो हम इधर गोकुल में बहुत धूमधाम के साथ नंद उत्सव होने लगा। उधर कंस भयभीत होकर उसने भी अपनी सेना को बुलाया और कहा भाई देखो ब्रज में जितने बच्चे हैं सबको समाप्त कर दो। और महाराज राक्षसी स्वभाव ऊपर कुछ और भीतर कुछ, अब इधर खूब नंद उत्सव हो रहा है, न दिन का पता है न रात का पता है। और जैसा कि वर्णन है कि सारी सृष्टि लालायत हो रही है और सारी सृष्टि क्या सृष्टि करता ब्रह्मा जी भी और स्वालन करता शंकर श्रृंगार करता शंकर भी और पालन करता विष्णु भी उस अपने अनुपम अद्वितीय अलौकिक दिव्य स्वरूप का दर्शन करने आ रहे हैं और बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी बड़ा धूमधाम मची हुई है। तो महाराज पहले सप होता है फिर उत्साह होता है, बिल्कुल अध्यात्म बात है। जो तप के बिना उत्सव मनाते हैं वो अधूरा उत्सव होता है। पहले तप होना चाहिए फिर उत्साह होना चाहिए, और जो उत्साह होता है तब उत्सव होता है, और जो उत्सव होता है तो आप देखेंगे तो उत्साह में जब की वृद्धि होती है तो रस की अभिव्यक्ति होती है। तो सारे ब्रजवासी जो है गोकुलवासी खूब उत्सव में विभोर हो रहे हैं, आनंद डूब रहे हैं। आप जानते हैं चाहे हम कुछ भी हों और किसी स्थिति में हों, जब अपना कुछ सुख लेने लगता है मनुष्य तब उसमें थकान आती है। अतः कुछ ब्रजवासी थके, कुछ मैया यशोदा आनंद थके, और लाला को प्राण प्यारे लाला को प्राणाधार लाला को प्राण जीवन लाला को बड़े सुंदर पालना में चला दिया। और इधर कंस के अनुयायी कहो आज्ञाकारिणी कहो श्री पूतना जी बड़ा सुंदर भाई का रूप बनाया। मैंने बताया ना आपसे संत लोग जो होते हैं साधु जन जो होते हैं प्रेमी जन जो होते हैं वो भीतर बाहर एक से होते हैं और बड़े भोले होते हैं, जिसमें जितनी चतुराई उतना ही वो प्रेम के राज्य से दूर रहता है और जिसमें जितना भोलापन वही प्रेम के राज्य में प्रवेश पाता है। तो भोली भाली श्री यशोदा जी गृह कार्य में लगी थी अपने लाला की सुख सामग्री से संयोजन तैयारी में लगी थी, इसका ही संयोजन कर रही थी। और इधर ऊपर से बड़ा सुंदर भेष बनाकर और धाय का भेष बनाकर श्री पूतना जी पधारी और कहने अरे यशोदा हाय 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 तेने ऐसी ऐसी मिथु रह गई है कि तेने श्याम सलोने मधुर मधुर लाला को पालने में बुलाकर तू गृह कार्य में लगी है। अरे भतू यदि तू कहे तो मैं तेरी लालाएं खिलाऊं। तो प्रेमियों में तो कुछ भेद होता नहीं। यशोदा जी ने कहा जैसा मेरा लाला वैसा तुम्हारा लाला आप। और इधर श्री पूतना जी ने माँ बनकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा तू मुझ अविनाशी को मारना चाहे, मुझ अविनाशी को तू मारना चाहती है। अजी तो प्रेमियों में सामर्थ्य है कि जन्मा का जन्म बनाए, कहीं जो प्रेमी नहीं है उसमें ये सामर्थ्य है सके कि मुझे अविनाशी को तू मार सके। लेकिन क्या करूं मैंने माँ का भेष बनाया है रूपी कृपालता का फिर बारह कार्य कपटी भेष है दम्भ है कटु हृदय है किंतु रूप कितनी उदार है कितने महान है। हाय हाय ये तो मेरी मुझको उसने लाला कह दिया। और महाराज वो जो विष से लगा हुआ जो स्तनपान कराया, तो अब श्री कृष्ण ने कहा अरे मैया तेने तो मुझे लाला कह दिया, तुम्हें तो तुझे छोड़ तो सकता नहीं, और तू मुझे अविनाशी को मारना चाहती है। तो श्री कृष्ण ने दूध क्या पिया, उस नन्हे से छोरा ने पूतना जी के प्राणों को चूस लिया। अब भैया जब प्राणों पे आके पड़ती है तो कपट खुल जाता है। अब कपट का भेद दूर होकर कोई पिशाचिनी का भेद लेकर के अब पूतना उड़ी, अब उड़ी तो पर अविनाशी को कहाँ छिपाए, ले जाए कैसे, ले जाए अनंत को कैसे ले जाए। तो जब प्राणांत समाप्त हुआ फिर श्याम सुंदर का स्पर्श हो गया तो पूतना जी के धाम की नले के गिरी। और इधर जो प्रेमी जनों का जो मन थोड़ी दूर के लिए श्री कृष्ण कहता, तो श्री कृष्ण ने कहा अच्छा देखिए भगवान के चरित्र में बड़ी विलक्षणता होती है, एक ओर जहाँ दिखाई देता है कि दुष्टों का श्रृंगार कर रहे हैं तो दूसरी ओर दिखाई दे रहा है कि भक्तों की भक्ति का पोषण कर रहे हैं। सारे ब्रजवासियों के जो मन थे वो सब श्री कृष्ण में लग गए। हाय हाय कौन आपत्ति आ गई, कौन आया, कैसे लाला को कौन ले गया। और देखे तो लाला मुस्कुराता हुआ उस मृतक उतना के छाती पर लेटा हुआ है। और श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा तेने झूठे ही सही, पर मुझको अपना लाला तो कह दिया, अब तो मैं तुझे मैया यशोदा की भांत वो लोग भेजता हूँ, और तू मुझे मारना चाहे इसलिए मैं तेरे प्राण पी लेता हूँ। न्याय और उदारता, न्याय और महान करुणा कृपालुता दोनों ही भगवान के चरित्र से स्पष्ट हो जाती है कि कोई भगवान को बलपूर्वक मारना चाहे या प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकता, और लेकिन किसी भी प्रकार से यदि कोई भगवान से आत्मीय संबंध जुड़ लेता है तो उसे भगवान अपना लेते हैं, अवश्य अपना लेते हैं। इस प्रकार ब्रज में भगवान कृष्ण के चरित्रों को देखा जाए तो उनमें सिवाय प्रेम के और कुछ देखने को मिलता नहीं, सिवाय प्रभु की कृपालुता के और किसी सत्य का दर्शन होता नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान का जो चरित्र है वो बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा विज्ञान है, और बहुत बड़ा ललित साहित्य भी है। कोई रस ऐसा नहीं है जो भगवत चरित्र में न हो, समस्त रसों का प्रादुर्भाव है। इस प्रकार आपने नहीं होगा कि भगवान कृष्ण के तीन प्रकार के चरित्र हैं, कुछ ब्रज के चरित्र हैं, कुछ वन के चरित्र हैं, कुछ नृसिंह के चरित्र हैं। ये जो जन्म उत्सव जो है ये ब्रज का चरित्र है। अब आप जानते हैं कि जहाँ जन्म होता है वहाँ क्षति भी होती है, वहाँ क्या नहीं होता, सभी उत्सव होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के नित्य नव उत्सव होते रहते हैं ब्रजवासियों के यहाँ, और श्री कृष्ण अपने प्रेम का पान भी करते रहते हैं, दान भी करते रहते हैं, और अपने ऐश्वर्य माधुर्य और सौंदर्य का वेद भी कराते रहते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है, जिस पर कोई विजयी नहीं हो सके। माधुर्य का अर्थ क्या है, जो सभी को अपना सके। सौंदर्य का अर्थ क्या है, जो सभी को खींच सके, सर्वप्रिय हो जाए, सबके मन जिसमें विलीन हो जाए, उसको कहते हैं सौंदर्य। और जो सभी को अपना ले, पतित से पतित हो, असमर्थ से असमर्थ हो, कैसे ही क्यों न हो, जो सभी को अपना ले उसको कहते हैं माधुर्य, और जिस पर कोई विजयी न हो सके उसको कहते हैं ऐश्वर्य। इसी अनंत ने मानव का निर्माण अपने में से किया है, अपने में से किया है। वही मानव में भी ऐश्वर्य होना चाहिए, मानव में भी माधुरी और सौंदर्य होना चाहिए। निसंदेह मानव में भी ऐश्वर्य है, मानव में भी माधुर्य है, मानव में भी सौंदर्य है। क्या ऐश्वर्य है मानव में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप देखिए जिसे कुछ नहीं चाहिए इसका अर्थ क्या हुआ, न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए। अब जिसे कुछ नहीं चाहिए उस पर कोई विजय हो सकता है, हो सकता है कोई, उस पर कोई विजय नहीं हो सकता। तो निष्कामता का ऐश्वर्य मानव का अपना ऐश्वर्य है। ऐसे ही निर्विकारता का सौंदर्य मानव का अपना सौंदर्य है। तो निर्विकारता का सौंदर्य अच्छा निर्लोभता की ओर, निर्मूलता की ओर, निर्मलता की ओर, आप ही बताओ किसका चित्त आकर्षित नहीं होता। निर्विमानी किसे प्यारा नहीं लगता है? और निर्लोभ किसे प्यारा नहीं लगता, निर्मोह किसे प्यारा नहीं लगता, निष्कामी किसे प्यारा नहीं लगता। तो निर्ममता से प्राप्त जो निर्विकारता है ये मानव का सौंदर्य है, और निष्कामता से प्राप्त जो 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 अपने आप में अपने को संतुष्ट कर लेना जो है ये मानव का ऐश्वर्य है। और आत्मीयता से प्राप्त, अपनेपन से प्राप्त जो जो अगाध प्रियता है ये मानव का माधुर्य है। तो जैसे उस अनंत में ऐश्वर्य है कि उस पर कोई विजयी नहीं हो सकता, उस अनंत में ये माधुर्य है कि वो सभी को अपना सकता है, उस अनंत में ये सौंदर्य है कि सभी के चित्त को खींच सकता है, ऐसे ही मानव में भी निष्कामता का ऐश्वर्य है, निर्विकारता का सौंदर्य है, और आत्मीयता के जागृत अगाध प्रियता अखंड स्मृति का माधुर्य। इन दो बातों को ठीक ठीक समझाने के लिए भगवत अवतार हुआ और भगवान के चरित्र का प्रादुर्भाव हुआ। अथवा भाई बुद्धिवादी लोग कहें कि उस निर्विशेष ब्रह्म को के चरित्र को समझाने के लिए पुराण की गाथा लिखी गई, क्योंकि ये मानव सेवा संघ है, ये कोई सांप्रदायिक संघ नहीं है। इसमें न किसी संप्रदाय का विरोध है न किसी का आग्रह है, किंतु सत्य का विवेचन है। तो सत्य क्या है कि हर भाई को हर बहन को ऐश्वर्य चाहिए, माधुर्य चाहिए, सौंदर्य चाहिए। ऐसा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं पराजित हो जाऊं, जो ये चाहता हो कि मेरी ओर आकर्षण न रहे, जो ये चाहता हो कि मैं सर्वप्रिय न हो जाऊं, ऐसा कोई नहीं। मतलब क्या, उसी अनंत ऐश्वर्य की, उसी अनंत सौंदर्य की, उसी अनंत माधुर्य की मांग मानव की अपनी मांग है, और उसी मांग के आधार पर मानव प्रभु का अपना है, निज जन निज है, निज है। और जो प्रभु का अपना निज है वो प्रभु को कितना प्यारा है, उसे प्रभु कितने प्यारे हैं, इसका कोई धारा पार नहीं। तो महानुभाव, क्या आज हम निर्ममता का सौंदर्य, निष्कामता का ऐश्वर्य और आत्मीयता का माधुर्य प्राप्त कर, जगाकर सोए हुए को जगाकर और छिपे हुए को प्रकट करने के लिए राजी हैं क्या? अगर राजी हैं तो मैया यशोदा की भांत कहना पड़ेगा, कृष्ण मेरा अपना लाला, अपना लाला है। आप जानते हैं वात्सल्य रस में कितना माधुर्य होता है, कितना स्नेह होता है। माँ बच्चे को सतत सुख देना चाहती है, सुख देना चाहती है, उससे कभी भी कुछ भी लेना नहीं चाहती। यही तो बात सही रस है। मैया यशोदा जी श्री कृष्ण को सुख देना चाहती है, कभी कुछ लेना नहीं चाहती है। सुनते हैं कि जब लाला कुछ बड़ा हो गया, समय समय लगा
देखने चलने लगा, चलने फिरने लगा। आप जानते हैं जो सभी का नहीं है वो भगवान नहीं, भगवान कहते हैं सभी का हो। तो यशोदा की भांत, यशोदा की सहचरी सखी अपने यहां की कुछ ऐसी प्रणाली रही है कि पहले एक को मुख्य रूप से स्वीकार करते हैं। वात्सल्य इसलिए कि मूर्तिमान श्री नंदरानी यशोदा जी मुख एक मान लिया, ऐसे ही माधुरी रस की मूर्तिमान श्री राधा रानी एक मान लिया, एक मान लिया। तो ऐसे ही सख रस की मूर्तिमान श्री दामा आदि, तो एक को मुख मानकर फिर उसके उसकी सहचरी बना दो, सखी बना दो, सखा बना दो, बेचाव से बना दो। तो और जो गोपियां थीं जिनके मन में ये भावना रहती थी कि कितना अच्छा होता कि श्री कृष्ण हमारे घर में आते, दूध दही माखन खाते, खिलाते, लुटाते, फैलाते, ऐसा भाव रखने वाले, निरंतर प्रतीक्षा रखने वाले। आप जानते हैं प्रेमियों के जीवन में एक बड़ी विलक्षणता होती है और ये होती है कि उनको निरंतर प्रतीक्षा रहती है, अखंड प्रतीक्षा, अगाध प्रियता। अखंड प्रतीक्षा भी रहती है, अगाध प्रियता भी रहती है। तो इसी प्रकार की अखंड प्रतीक्षा रखने वाले जो वात्सल्य भाव की गोपियां थी, वे कृष्ण अपने सखाओं के साथ उनके घर में घुस जाते और उनका दूध दही माखन खाते, खिलाते, लुटाते, मोर बंदरों को भी खिलाते, फैलाते भी। जो एक बालक नटखटी कर सकता है वो सारी नटखटी श्री कृष्ण ब्रजवासियों के घर में करते। पर किनके घर में, जिनके सारा दिन प्रतीक्षा करके बीतता है, सारी रात प्रतीक्षा, फिर बंदरों को भी खिलाते फैलाते भी। जो एक बालक नटखटी कर सकता है वे सारी नटखटी श्री कृष्ण ब्रजवासियों के घर में करते। पर किनके घर में, जिनके सारा दिन प्रतीक्षा करके बीतता है, सारी रात प्रतीक्षा करके बीतती है। किस बात की, राम सुंदर हमारे लाला बनकर हमारे माखन खाएं, हमारा दही खाएं, इत्यादि इत्यादि। और फिर भी जब लाला की स्मृति सबल होती तो क्या करती, कैसे यशोदा घर जाए, उसको देखें कैसे। तो आखिर किसी घर जाते हैं तो किसी बहाने से नहीं जाते हैं, किसी काम से नहीं जाते हैं। तब वात्सल्य भाव की गोपियां आकर के यशोदा को उल्हाना देने आते हैं। अब देखिए भगवान के चरित्र में भीतर कुछ होता है, ऊपर कुछ होता है। ऊपर तो उल्हाना देने आई है, अब भीतर किसी बहाने से नेपाल को देखने आए, बहाना है। और आकर कहती हैं, हे नंदरानी अब हम तुम्हारे गांव में नहीं आएंगे। ये रानी और राजा जो हमारे यहाँ कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं सिद्धस्थ, प्रेम में सिद्धस्थ है नंदरानी, इसलिए नंदरानी प्रेम में सिद्धस्थ है नंद जी, इसलिए नंद जी। तो महाराज हम तुम्हारे गांव में नहीं रहेंगे, क्यों भूसू का बात है गई, क्यों गाँव में नहीं रहोगी। अरे बात क्या है, तुम्हारा धोखा बड़ा ढीत है, ऊपर से कहते तुम्हारा धोखा, भीतर से क्या सोचते हैं मेरा धोखा। बड़ी विचित्र है प्रेम की दशा, बड़ी अटपटी होती है, भीतर से कुछ सोचती है ऊपर से कुछ कहती है। हम तुम्हारे गांव में नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहोगी, तुम्हारा धोखा बड़ा नटखट है। अरे यशोदा जी खाए तो खाए कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा लाला अब वैसा हमारा लाला, बीच बीच में सत्र भी आता जा रहा है और उल्हाना भी देती जा रही है। और लाला की ओर देखिए, ये दो तरह का विरोध, विरोध मानकर भी चिंतन होता है तो अनुकूल मानकर भी चिंतन होता है, है? एक हमारे मित्र हैं तो विरोध मानकर के चिंतन करते हैं, बुराई भी करते जाते हैं, चिपकते भी जाते हैं। तो इधर उल्हाना भी देती जा रही है और श्री कृष्ण की ओर आकर्षण होती जा रही है और कहती है देखो ये तुम्हारा लाला हमारे दूध दही माखन खाता है, जो खाता है उसे तो कोई बात ना है, पर वो तो फैला देता है, हृदय का फैलाना तो बुरा लगता है ना, और मुर्दा नहीं लुटाता है। यशोदा बड़ी भोली है, कहती है अरे तो मेरा नन्हा सा लाला, तुम दूध दही माखन को नीचे पे धर दिया करो, नीचे पे रख दिया करो। तो बोले हे नंदरानी, ये लाला बड़ा ढीत है, ये नन्हा सा तो है बड़ा बड़ा ढीत है। बोले क्या ढीत है? कि जब हम सीके पे रख देते हैं तो सखाओं के कंधा पे चढ़कर लकुट से तोड़ देता है। ऐसा करता है ये? उधर तो देखो अंधेरे में राम कुठरिया में छिपा के रख दिया। बोले हे नंदरानी, जब हम छिपा के रखते हैं तो तेरे लाला के मुख पर इतना प्रकाश है अंधेरे में रहे, कैसे तो लाला को इसलिए तो कुछ कह सके, कैसे अपनी सहचरी शक्तियों से कुछ कह सके। तो एकदम कहे थे अरे भटू, नाम छोड़ के मर जा, अगर लाला ने एक मुट्ठी तोड़ी है तो एक व्यक्ति नौ नौ मुट्ठी ले जाओ। ये सब गैया लाला की, ये सब माखन लाला का, ये सब दूध दही लाला का, कितनी निर्ममता है। आप देखे जाइए, मानवीय चरित्र है भक्तों का चरित्र, हमारा और कोई चरित्र नहीं है, मानवीय चरित्र है। तो ये सब दूध दही माखन लाला का है, अगर आपकी एक मटकी लाला ने तोड़ी हो तो एक एक की नौ नौ मटकी ले जाओ, पर गांव छोड़ के मत जाओ। अब सब ब्रज देखने के लिए हे नंदरानी, आप अधीर न हो, हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे जैसे ही तुम्हारा लाला वैसे ही हमारा लाला, तुम खुद फैला मन दो खा मन दो, कोई बात ना है, हम गांव छोड़ के नहीं जाए। इस प्रकार ब्रज में अनेक श्री कृष्ण के चरित्र हैं, उनको कितना कहा जाए, कब तक कहा जाए। और मैं आप जानते हैं बेपड़ा आदमी, मैंने तो बहुत थोड़ा श्री कृष्ण का चरित्र सुना है, और उसका जो तात्पर्य है वो मैं आपकी सेवा निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसे सत्य भाव के चरित्र भी हैं, ऐसे ही मधुर भाव के चरित्र भी हैं, ऐसे ही परकिया भाव के चरित्र भी हैं, अनेक श्री कृष्ण के चरित्र हैं। सच पूछिए तो दो ही बातें हैं, एक और उनकी कृपालुता का, उनकी महानता का, और दूसरी ओर प्रेमियों की आत्मीयता का। चित्रण है और कुछ नहीं, आत्मीयता ही प्रेम की प्रतीक है, और कोई प्रेम की प्रतीक नहीं है। तो क्या आज हम और आप इस अजन्मा का जन्मोत्सव मनाते हुए इस बात को स्वीकार करेंगे, इस बात को कि ये अनंत हम सबकी अपनी जाति का है। कभी तो लाला बना सकोगे, कभी सखा बना सकोगे, कभी पति बना सकोगे, हमारी अपनी जाति का है, या हम उसकी अपनी जाति के हैं, हमारी और उसकी जाति एकता है। पहली बात ये बात जो है जाति एकता, ये अद्वैतवादियों को माननी पड़ती है। ये ब्रह्म की जाति एकता मानकर ही ये अद्वैत सिद्ध करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है नित्य संबंध, ये वेदियों की चीज है। वेदियों ने इस अनंत से नित्य संबंध स्वीकार किया है, और प्रेमियों ने इस अनंत से आत्मीय संबंध स्वीकार किया है, अपनेपन का संबंध स्वीकार किया है। आत्मीय संबंध में जातीय संबंध भी है, नित्य संबंध भी है। तो जितने प्रेमी जन हुए हैं उन्होंने उस प्रभु को अपना करके स्वीकार किया है। इस प्रकार के अनेक चरित्र हैं, अनेक उदाहरण हैं भक्तों के जीवन के। एक बार भक्तमती देवी भी कहती थी कि जब मैंने शारीरिक बौद्धिक विकास के पश्चात अपने को अपनी ओर देखा तो मुझे एक अभाव दिखाई दिया, एक बड़ी बड़ा अधूरापन जीवन दिखाई दिया। मैंने पूछा क्या अधूरापन आपको दिखाई दिया? तो उन्होंने कहा कि मुझे सचरित्रता के आधार पर सम्मान मिल गया, योग्यता के आधार पर रोटी मिल गई, पर मेरे हृदय की ये इतिहास कोई मेरा अपना होता वो नहीं पूरी हुई, वो नहीं पूरी हुई। और बिगड़ कर कभी कभी झुंझलाती हूँ, कहती किसने मेरा निर्माण कर दिया, किसने मुझे बना दिया, मैंने अपने आप से अपने को बना नहीं लिया, और बना दिया तो राजकुमार सिद्धार्थ जैसा बैरा भी क्यों नहीं दे दिया, कबीर जैसा विचार क्यों नहीं दे दिया, और मेरा व्यक्ति सरल श्रद्धा भक्ति को नहीं दे दी, मुझको किसने बना दिया? बिल्कुल वो कहते भी बड़ी ईमानदारी से विद्रोही चिंतन, विरोध भाव को लेकर चिंतन। होंगे कोई भगवान कहीं बैठे होंगे एक कठोर जड का भेष बनाए हुए, कौन कहता है कि कृपालु हैं जबकि उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। जब मेरे पास आई सन 1954 तब मैंने कहा कि देखो तुम जानो चाहे न जानो, मानो चाहे न मानो, पर देखो जी कोई एक है ऐसा जो सभी का अपना है, वो तो तुम्हारा भी। तो उसे कहते थे बड़ी ईमानदारी से कहते थे कि सब कुछ सुनने के बाद भी मेरे मस्तिष्क में इतना विद्रोह था कि मैं मुंह से नहीं कह पाती थी मेरे को, मुंह से भी नहीं कह पाती थी, मन से कहने की बात तो अलग, पर क्या बताऊं, हृदय में मांग थी मांग। मानव सेवा संघ में एक बड़ी सुंदर बात बताई जाती है कि भाई जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो उसकी आवश्यकता अनुभव करो, उसको बलपूर्वक पकड़ने की कोशिश मत करो, केवल आवश्यकता अनुभव करो। कि वे कहते थे कि मेरे हृदय में मांग है, पर मैं इतनी सख्त हृदय थी, इतनी कट हृदय थी, इतना मेरा मस्तिष्क विद्रोही ये वाणी से भी नहीं कह पाती थी और इस मांग से भी मिटा नहीं पाती थी। संत उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, वे कितने हम सबके अपने हैं, उन्होंने मेरे करने की बात भी की और अपने करने की बात भी की। ये मानव का माना हुआ, उन्होंने कहा हम खुद के शब्द हैं, ये मानव का माना हुआ, माना हुआ नहीं रह जाता। मैंने देखा है, मैंने पाया है कि वे परम प्रेमी हैं और जो भाव उनसे